ओम शांति। वेलकम भाई साहब। खास भाई साहब की क्लास रखी क्योंकि आनंदमयी है ना भट्टी, शक्तिशाली भट्टी में सुना है ना हमेशा सभी ने। हाँ, तो हमने रिक्वेस्ट किया था, आपको पता ही होगा 76 से बाबा के पास आए, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमएससी में, और तीनों विभाग जो शांतिवन, मधुबन और टोली विभाग है, तीनों स्थान के ज्ञान सरोवर भी ना, उनकी टोली विभाग का शुरू से ही सारा जिम्मा है। तो हर एक की अपनी विशेषता है बाबा कहते हैं ना, उस आधार से तो खुद स्वयं के जीवन से ये धारणा है ही है कि हमको निराकारी निर्विकारी होकर के, निरहंकारी होकर ये जीवन सफल करना है। दो तीन प्रश्न है, मैं पूछ लूं सबकी तरफ से। एक तो ये कि हम पर कोई इल्जाम लगते हैं तो हमारा कुछ उसमें हिस्सा नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है, सब कोशिश कर लेते हैं तो बहुत दुख होता है, उस दुख से छूटने का कुछ समाधान और अनुभूति के लिए और हम क्या करें खास, है ना। और भी किसी को प्रश्न है? प्रश्न है किसी को? आज सुबह दो क्लास हुआ है, एक मोहन भाई साहब का, उन्होंने बाबा के अव्यक्त होने के दिन के आधार पर प्रकृति और बाबा का वर्णन किया था, और ये कि पांचों तत्व प्रकृति ये सब, और सुबह गीता बहन जी का था कि बाबा से इतना हमने पाया है तो अभी हमको पुरुषार्थ तो करना ही है, तो पुरुषार्थ की शक्ति के आधार पर हमको मेहनत से माना मेहनत है ही क्या, माना अभी तो सत्य ढूंढना नहीं है ना, रेडीमेड मिल गया है भगवान से। तो वो दो क्लास हुआ है, लेकिन दो चार प्रश्न है। दुख कईयों को है इसमें, कईयों को है, आंख में भी है, छूटना भी, छूटना चाहते हैं ना कई लोग, स्थिति में सुखी, हाथ उठाओ, खास माताएं तो हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी, हमको दुखी नहीं रहना है, भाई तो फिर कैसे भी करके, ऐसा नहीं भाइयों को दुख नहीं होता, पर मेरा अपना कुछ सोच है कि भाई लोग ना सोचते दुख फेंक दो, वो फेंका हुआ दिखता है, ऐसा नहीं, उन्होंने भी सुलझा लिया है लेकिन वो फेंक देते हैं। माताओं को हर चीज परोटने की आदत है तो वो शायद उसको, तो आप दोनों के हिसाब से देख लीजिए, तो विशेष बात है ना जी। थैंक यू।
ठीक है। ओम शांति। निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति कैसे अनुभव करें? ब्रह्मा बाबा ने जिस समय साकार देह का त्याग किया उसके पहले बाबा ने यही मंत्र दिया था कि सदा निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति की अनुभूति करते रहना। क्योंकि इन तीन शब्दों में ही सारे ज्ञान का सार समाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर हम बहुत ऊंची स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं तो तीन बातों पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। उच्च कोटि की साधना के लिए तप साधना अगर हम बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो पहली बात आवश्यक है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव करना जरूरी है। यह यह पुरानी दुनिया हमारे लिए नहीं है। इस दुनिया से मैं मर चुका हूं या मैं मर चुके हूं, तो जितना बेहद का वैराग्य इस दुनिया से हमें अनुभव होता है, उतना परमात्मा के साथ अनुराग अर्थात प्यार हमारा बढ़ता जाता है। जितना हमारा बुद्धि योग यहाँ से हटता जाता है उतना बाबा से जुटता जाता है। दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती हैं। तो हमारे अंदर से ये रियलाइजेशन हो, ये महसूसता हो कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है, मैं अभी रिटर्न जर्नी पर हूं, बहुत अच्छा मैंने पार्ट बजाया है, अभी मैं रिटर्न जर्नी पर हूं, ऐसी महसूसता हमारे दिल में होना जरूरी है। दूसरी बात, ऐसे उच्च कोटि की साधना के लिए एक अटूट लगन हमारे दिल में होना जरूरी है। जैसे मीरा को लगन लगी थी, मेरा तो एक कन्हैया दूसरा न कोई, क्योंकि जितनी लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है उतनी योग की अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित होती जाती है। तो जैसे मीरा को अटूट लगन लगी थी, वो कृष्ण में बन चुकी थी, ऐसे हमें भी बाबा के प्रति अटूट लगन हमारे दिल में लगी रहे, जिससे हम एकदम शिव में बन जाएं। एक बार विवेकानंद जी ने हंसी हंसी में कहा था, ये सारा संसार पागलखाना है। पागलखाना है, सब इस संसार में पागल है। क्यों भाई? कोई धन के पीछे पागल है, कोई व्यक्ति के पीछे पागल है, कोई विद्या के पीछे पागल है, कोई मान प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, कोई प्रभु के पीछे पागल है। इस संसार में सबसे महान वो है जो प्रभु के पीछे पागल है। क्यों महान है? क्योंकि इन्हों को तो अल्पकाल की कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, लेकिन जो प्रभु के पागल प्रेमी होते हैं उन्हों को अविनाशी बेहद की प्राप्तियां होती हैं, इसलिए वो सबसे महान कहलाते हैं। तो ऐसे दीवानापन या पागलपन कोई भी उपलब्धि हमें प्राप्त करनी होती है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, उसके लिए ऐसा अटूट लगन होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, उच्च कोटि की तप साधना के लिए हमें सारे दिन भर में देखते हुए न देखने का अभ्यास बढ़ाते रहना जरूरी है। चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन देखने में हमारी कोई रुचि नहीं है। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है 70% इन्फॉर्मेशन आत्मा में नेत्र मार्ग से भरती है। 70% इन्फॉर्मेशन नेत्र मार्ग से आत्मा में भरती है, और जब हम एकांत में बैठते हैं तो वो रिकॉर्ड हुई बातें हमारे मन में दोहराती रहती हैं, जिससे एकाग्रता को प्राप्त करना थोड़ा कठिन लगता है। इसलिए देखने में हमारी रुचि ना हो, साइट सीन पुरानी दुनिया की बातों में, क्या है इस दुनिया में, कुछ नहीं है, असार संसार है, नीरस दुनिया है, तो निराकारी से निर्विकारी बनना, देहाभिमान ये जो बीज है इससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है उस पर विकारों के फल और फूल लगते हैं, अर्थात देहाभिमान से विकारों की उत्पत्ति होती है। तो निराकारी स्थिति जितनी हम बढ़ाते जाते हैं तो देहाभिमान हमारा घटता जाता है। अभी देहाभिमान बहुत पक्का हुआ है 63 जन्मों के संस्कार से, अभी जैसे जैसे निराकारी स्थिति हमारी बढ़ती जाती है उतना उतना देह का भान घटता जाता है, मिटता जाता है। दूसरी बात, जितनी निराकारी स्थिति हमारी बनती जाती है उतनी बाबा की याद हमारी बढ़ती जाती है, जिससे हमारी आत्मा में विकारों की जो खाद है वो भस्म होती रहती है और निर्विकारी स्थिति हमारी निखरने लगती है। विकारों के अंश अभी तक भी मुझ आत्मा में हैं, अभी तक भी विकारी संकल्प मेरे मन में चलते हैं, तो रिटर्न जर्नी मेरी जो चल रही है कलयुग से द्वापर युग, द्वापर युग से त्रेता युग, त्रेता युग से सतयुग, तो अभी तक भी मैं द्वापर युग में ही हूं अगर विकारी संकल्प मेरे मन में चलते हैं तो। अभी तक ही मेरी द्वापर युगी स्थिति है। विकारी संकल्पों से मुक्त होना अर्थात त्रेता युगी स्थिति अनुभव करना, गोल्डन एजेड स्थिति अनुभव करते रहना। तो इसलिए जितना जितना हम एकांत में बैठकर देह से न्यारी निराकारी स्थिति को बढ़ाते जाते हैं उतना विकारों के अंश मिटते जाते हैं। हम सभी विष्णु वंशी बनने जा रहे हैं। विष्णु अर्थात विकारों का विष अंश मात्र भी न हो, ये ब्रह्मा बाबा की महान स्थिति है। तो जितनी हमारी स्थिति विकारों के अंश से निर्लिप्त होगी उतना विष्णु के समीप हमारा पाठ सतयुग में चलेगा। इसलिए हमें ये बात चेक करते जाना है निर्विकारी स्थिति मेरी कहां तक बनती जा रही है। मधुबन सारी पृथ्वी पर, ये जो पृथ्वी का गोला है उस पर मधुबन ऐसा एक महान स्थान है जहां योग के सुंदर और गहन अनुभव सहज रीति से कर सकते हैं। इस भूमि पर रहने का चांस मिलना भी बहुत पुण्य कर्मों का चिन्ह है। जिन आत्माओं के पास पुण्य कर्मों की पूंजी पिछले जन्म की होती है उन्हों को ऐसा गोल्डन चांस, ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर रहने का और तपस्या करने का मिलता है। तो बार बार हम अंतर आत्मा को झांकते रहें, आत्मदर्शन करते रहें और अंतर जगत में खोए रहने का अभ्यास करते रहें। एकदम मैं निराकारी आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा धरती पर अवतरित हुआ हूं, ऐसे अपने चमकते हुए अजब का सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। अजब का सितारा इसलिए हूं क्योंकि इसको देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है, और गजब का सितारा इसलिए हूं जो इतनी सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी घिसता नहीं, कभी वो मिटता नहीं, इसलिए गजब का सितारा है। तो एकांत में बैठकर उस निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास या तप साधना हम बढ़ाते जाएं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, निर्विकारी हैं, ऐसे मैं उनकी संतान आत्मा भी निराकारी हूं और निर्विकारी हूं। दोनों का कंट्रास्ट करते रहें, दोनों की तुलना करते रहें और बाबा की तरह हमें स्थिति बनाना है, बाबा को फॉलो करना है। शिव बाबा से प्यार है तो उसकी निशानी है निराकारी अवस्था पक्की करना। ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो उसकी निशानी है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाते जाना। अब कितना मेरा बाबा से प्यार है ये हम चेक कर सकते हैं। जिससे प्यार होता है उसके जैसा बनने का हम पुरुषार्थ करते हैं, ये प्यार की निशानी है। केवल मुख से या मन से कहना मेरा बाबा से बहुत प्यार है, उसके निशाने ये है। उनके जैसी निराकार स्थिति में हम स्थित रहने का दिल से प्रसाद करते रहेंगे, ब्रह्मा बाबा से दिल का गहरा प्यार है, तो उनके जैसा आकार स्थिति फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। तो कितनी मेरी स्थिति निर्विकारी बनी है ये हमें चेक करना है, तो दो बातों से हम चेक कर सकते हैं। पहली बात तो हमारे मन में सारे दिन भर में जो संकल्पों की चेन चलती है, संकल्पों का जो पैटर्न चलता है, उसको चेक करने से हमें पता चलता है मेरी स्थिति कैसी बनी हुई है। अभी भी अशुद्ध संकल्प चल रहे हैं, माना विकार की बदबू मेज आत्मा में अभी भी अंश रूप में है। विकारी संकल्प चलना, रोब आना, थोड़ा सा लोभ लालच होना, थोड़ा सा अहंकार होना, ये थोड़ा सा लगाव झुकाव होना, ये विकारों के छोटे मोटे रूप हैं, अंश हैं, इन्हों को हमें चेक करना है। और दूसरी उसकी चेकिंग हमें स्वप्न के द्वारा पता चलता है, क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्ध चेतन मन काम करता है और पुराने संस्कारों का बहुत गहरा प्रभाव हमारे अर्ध चेतन मन पर पड़ता रहता है। तो इन दोनों बातों से हमें पता चलता है मेरी स्थिति कितनी निर्विकारी बन चुकी है, कितनी मुझे बनानी है। अभी पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों को जीतना उसको कहते हैं निर्विकारी बनना। तो निर्विकारी शब्द का प्रयोग करने के बाद फिर तीसरा बाबा ने शब्द यूज किया है निरअहंकारी बनो, जबकि अहंकार इसमें भी आ गया, पांच का पांचवा विकार। मैंने 95 में प्रकाश मणि दादी जी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने यही मैंने प्रश्न पूछा था, दादी जी ये पांचवा अहंकार इसमें विकारों में आ गया, पांच विकारों में, फिर भी बाबा ने ये शब्द का प्रयोग क्यों किया निरअहंकारी बनो, इसके पीछे क्या भाव है। तो दादी जी ने जवाब दिया था, बाबा के पास जब हम आते हैं तो हमारी झोली खाली होती है, खाली हाथ आते हैं, लेकिन बाबा के पास आने के बाद ऐसी कुछ उपलब्धियां हमें बाबा से मिलती हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, कुछ प्राप्तियां भी हमें बाबा से होती हैं, तो उन प्राप्तियों का हमें सूक्ष्म अहंकार आ जाता है, मैं बहुत अच्छा मनन चिंतन करता हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, ये जो सूक्ष्म अहंकार आता है ये भी ना हो, क्योंकि ये मेरी अमानत नहीं है, ये बाबा की अमानत मुझे मिली है। खाली हाथ मैं बाबा के पास आया था, ये सब कुछ प्रॉपर्टी बाबा की है, बाबा की देन है, बाबा की ये सौगात है, बाबा की अमानत है। इस अमानत को अपनी अमानत समझना, अर्थात अमानत में खयानत करना। तो जितना हम उपलब्धियां प्राप्त करते हैं बाबा से, उतना निर्माण हम बनते हैं, स्वतः बनते हैं, निरंकारी बनते हैं। यह उसके निशानी है। चलते चलते अगर हमें थोड़ा सा भी किसी बात का ईगो आता है या अहंकार आता है, तो समझ लो वो मायावी साइड है। बाबा की अमानत को हम अपनी अमानत समझ रहे हैं। दो बातों में हम थोड़ा सा मिक्सर करते हैं, मुझे शुद्ध नशा है या अशुद्ध अहंकार है, ये कभी कभी हमें पता नहीं चलता है। हम भ्रम में रहते हैं कि मुझे शुद्ध नशा है। तो इसकी सूक्ष्म चेकिंग हम कैसे कर सकते हैं? हम इतने बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के संतान हैं। हमारे चेहरे पर वो नशा, वो रुहाब, वो खुमारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान के हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। तो शुद्ध नशा हमारे जीवन में अनुभव होना बहुत जरूरी है। लेकिन जितना शुद्ध नशा होता है, उतना हम निर्माण चित्त रहते हैं, नम्रता हमारे जीवन में होती है। और ये जितना अशुद्ध अहंकार होता है, उतनी अकड़ या अहंकार हमारे में होता है। कहते मुर्दा है ना, अकड़ा हुआ रहता है, देह अभिमान की ये निशानी है। जो पूर्णतया निराकारी है वो बहुत गोल्ड बन जाता है और बहुत उसमें निर्माणता होती है। प्योर गोल्ड ही मोल्ड होता है। तो मेरे आत्मा में अशुद्धि अभी भी है, अलय अभी भी है, इसके कारण मैं मोल्ड नहीं हो पा रहा हूं, एडजस्ट हो नहीं पा रहा हूं। हमें बाबा से सीखना है। बाबा सबसे बड़े हैं, बाबा से बढ़कर और कोई भी इस संसार में नहीं है। लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी बाबा मुरली में कहते हैं, मैं आप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं। प्रैक्टिकल बाबा ने बच्चों की सेवा की। कराची में बाबा बच्चों के पैर को मालिश करते थे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा मिलके। छोटी छोटी दादियां बच्ची थी छोटी, रात को 10 बजे सोने के पहले उनके पैरों को मालिश करते थे, तेल लगाते थे। ये मेरे होनहार राजे महाराजे बच्चे हैं। और दूसरी बात, हर मुरली के अंत में बाबा के चेहरे की तरफ देखो, याद प्यार नमस्ते, आंखें बाबा की बच्चों के सामने हल्की सी झुकती है, नमस्ते कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई नमस्ते? क्या आवश्यकता नहीं बाबा को नमस्ते करने की? लेकिन बाबा कह रहा है, देखो मेरे से सीखो, मैं कितना बड़ा हूं और कितना निरंकारी हूं, सीखो मेरे से। बड़ा केवल कहने से बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसके व्यवहार में, उसके चलन में वो नम्रता दिखाई देती है। अहंकारी व्यक्ति से वैसे भी लोग दूर भागते हैं। और जो बहुत नम्रचित होता है उसके लोग समीप आते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से सेवा का चांस और भी मिलता है। उसकी कंपनी में हर कोई रहना पसंद करता है। इसलिए जितना निराकारी स्थिति का हम अभ्यास करते रहते हैं उतना ऑटोमेटिक निर्विकारी स्थिति बनती है। और ये जो सूक्ष्म अहंकार है वो भी हमारा धीरे 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 मिटने लगता है। लोग पसंद का हमें सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब हम सभी के साथ घुल मिलते हैं। हमारा व्यक्तित्व बहुमुखी व्यक्तित्व होता है। छोटे के साथ मिल जाते हैं, बड़ों के साथ मिल जाते हैं, जैसा सिचुएशन है वैसा हम स्वयं को ढाल देते हैं। ये उसकी निशानी है। जैसे बाबा में हमने देखी, तो ये हमें स्थिति बनानी है। विकार कार वी कार, स्वयं को कार समझते हैं, आत्मा है ड्राइवर और कार समझ रहे हैं तो विकार ऑटोमेटिक जागृत होते हैं। विकार जो शब्द है वो इससे निकला हुआ है, क्योंकि हम स्वयं जो जब कार समझते हैं, पति शरीर समझते हैं तो विकार जागृत हो जाते हैं। हम निराकार हैं, कार से एकदम न्यारे हैं, बिंदु हैं, तो निर्विकारी बनते हैं। समझा? इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें निराकारी स्थिति हमारी जितनी बढ़ती जाती है उतना स्वयं स्वमान में रहना और सभी को सम्मान देते रहना ये हमारे जीवन में नेचुरल होता है। दादी जी ने हमने देखा दादी जी में वो स्वमान भी रहता था, बहुत अथॉरिटी भी दादी के व्यक्तित्व से दिखाई देती थी और सबको सम्मान भी दादी जी देती थी। तो सबको सम्मान देना ये भी बहुत बड़ा गुण है। थोड़ा सा भी अहंकार होता है तो हमें लगता है समान वालों को और बड़ों को सम्मान देना थोड़ा सा कठिन लगता है। छोटों को प्यार हम देंगे, छोटों को सम्मान भी देंगे, लेकिन समान वालों को और बड़ों को सम्मान देना उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। जिसका बड़ा दिल होता है वही सबको सम्मान करता है। समझा? इसलिए हमें खास ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह से। पावरफुल निराकारी स्थिति भी जितनी गहराई की होगी और जितनी पावरफुल होगी उतनी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। केवल बिंदु नहीं समझना है, बिंदु में एकदम डूब जाएं, बिंदु में एकदम खो जाएं, स्वयं को एकदम निराकारी सितारा समझें और उसमें भी शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जब हम समझते हैं तो ज्ञान सूर्य बाबा से बहुत शक्तियां आत्मा में स्वतः ही हम खींच सकते हैं और ऐसी ज्वाला मुखी स्थिति शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। विकारों के अंश मिटने लगते हैं। विकारों के जो दाग हीरे पर हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसलिए आत्मा समझें लेकिन बहुत गहराई से आत्मा की अनुभूति करें। बाबा की अंतिम दिनों में जब कर्मातीत स्थिति थी तो बाबा कुटिया में बैठे रहते थे और कोई भी बाबा से मिलने बहन या भाई जाती थी तो बाबा के सामने बैठते ही एकदम आत्मा की ऐसी पावरफुल स्थिति थी, वो फोर्स बाबा का जो अशरीर स्थिति का था, निराकारी स्थिति का था, वो आत्मा बह जाती थी शांति के प्रवाह में या शक्ति के प्रवाह में, एकदम वो भी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाती थी। इतनी पावरफुल निराकारी स्थिति बाबा की थी। तो हमें भी इस स्थिति को निखारते जाना है, गहराई से बढ़ाते जाना है। क्योंकि जितना हम आत्मिक स्थिति में डूब जाते हैं, उतना आत्मा का जो ऑरा है, आत्मा का प्रकाश जो है, धीरे 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 और दिव्य और भव्य बनता जाता है, विशाल बनता जाता है। समझा? इसलिए स्वमान के साथ ये अभ्यास हमें करना है, नहीं तो रूखा सूखा लगेगा वो। बिंदु आत्मा समझना, बिंदु आत्मा समझना, लेकिन किस प्रकार के मैं बिंदु हूं स्वमान के साथ अनुभव करेंगे तो उसमें आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, बहुत आप उस अभ्यास को एंजॉय करोगे। स्व और मान, स्व अर्थात मैं आत्मा, मान अर्थात महान आत्मा, तो स्वमान के साथ इस निराकार स्थिति की अनुभूति करते जाएंगे तो फिर आप उस लक्ष्य तक सहज रीति से पहुंच सकते हैं। कौन सा प्रश्न था? कोई दुख देता है तो कोई हमारी गलती कभी नहीं होती है और कोई हमारे पर झूठा इल्जाम लगा देता है तो हमें थोड़ा सा दुख होता है। बाबा कहते हैं न दुख दो न दुख लो, तो हम दूसरे को दुख तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा इल्जाम अगर कोई लगाता है तो उससे हम दुख ले रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तो ये दुख लेना हुआ है। और इल्जाम कोई भी करता है तो हमें ध्यान रखना है उस आत्मा के साथ हमारा कुछ अकाउंट नेगेटिव है, 63 जन्मों का कोई ना कोई हिसाब किताब उस आत्मा के साथ है, तभी वो कुछ ना कुछ बातें हमारे लिए बना रहा है और ये कर रहा है। तो हमें बाबा कहते हैं ना, सच की नैया हिलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो आज नहीं कल वो बात सत्यता की बाहर आती है, सामने आती है, और वो जो दुख देने वाला व्यक्ति है, इल्जाम लगाने वाला व्यक्ति है, वो भी कुछ समय के बाद रियलाइज करता है कि मैं ये झूठा आरोप कर रहा हूं, तो उसको भी वो पछताना पाता है। तो एक बात हमें ध्यान रखना है, हलचल में स्थिति लानी नहीं है, एक ही स्लोगन याद रखना है, सहना आत्मा का सच्चा गहना है। जितनी बड़ी महान विभूति होती है उतनी बड़ी उसकी सहन शक्ति होती है। अगर रोड पर पड़े हुए पत्थर पर हथौड़े नहीं लगेंगे तो वो पूजनीय मूर्ति मंदिर में नहीं रखी जाती है। जितने हथौड़े लगते हैं ना उतनी वो अच्छी मूर्ति बनती है और अच्छे लोग उसकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं गाली देने वाले, इल्जाम लगाने वाले आपकी मूर्ति पर बाद में गिन गिन कर फूल डालेंगे। जितनी गालियां देते हैं ना उतने उसको फूल लगाने होंगे, फूल आपको पहनाने होंगे, चढ़ाने होंगे। ये नियम है, कोई भी इल्जाम लगाता है किसी की कमी है नहीं है। इसलिए हमें ध्यान देना है। दीदी हमेशा कहती थी अगर कोई मेरे लिए कुछ उल्टा काम कर रहा है तो क्या समझो, इसमें भूत प्रवेश हुआ है, बेचारा ये परवश है। लेकिन ये मेरा पेपर ले रहा है, मेरा पेपर लेने के लिए इसमें भूत सवार हुआ है, ये पेपर कितना परेशान हो रहा है, मेरा पेपर ले रहा है, इस पेपर में मुझे पास होना है कि फेल होना है, पेपर में पास होना है या फेल होना है, मुझे पेपर में पास होना है। लेकिन मेरा पेपर लेने के लिए बेचारा देखो कितना परेशान हो रहा है, उसमें परवश है आत्मा ये। तो इस तरह से हम देखते हैं ना, तो हमें वो दुख का लहर अनुभव नहीं होती है, समझा। कुछ समय के बाद में अगर हम चिड़चिड़ा होते हैं और हलचल में आते हैं तो वो व्यक्ति हमें और करता है, तंग करने का लगता है। लेकिन हम जितना अचल अडोल लेते हैं ना, वो कहता है छोड़ देता है, इस पर तो कोई असर होता ही नहीं है, छोड़ दो, ये चिकना घड़ा है, समझा क्या। मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था ज्ञानामृत में, सहन शक्ति सर्व विघ्नों से बचने का कवच, इस हेडिंग के नीचे वो आर्टिकल छपा था ज्ञानामृत में। सर्व विघ्नों से बचने का कवच कौन सा है? सहन शक्ति। तो मुझे वो कवच पहनना है और सेवा के क्षेत्र में रहना है, ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न कौन सा था, इसमें कौन सा प्रश्न है? बहुत अच्छी टीचर मिली है आपको बहन जी, बहुत अच्छी है।
हाँ पूछ लू ना।
हाँ जी,
ऐसा था भाई साहब, भले हम ज्ञान में ये सुनाते हैं कि भाई मेरा कोई हिसाब होता है ना, बहुत सारे जन ये भी कहते हैं कि अगर हम ऐसा मानते हैं तो हमको गिल्ट कॉन्शियस होता है कि मैंने कितना खराब काम किया जो मेरे हिसाब अभी तक चल रहे हैं।
अच्छा, हिसाब किताब
माना
वो हिसाब,
मैं उनकी तरह से इसलिए पूछ रही, तंग तो नहीं कर रही ना आपको मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि माना हम लोग बड़ी दुविधा में है।
हाँ जी,
अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पूर्व कर्मों का है तो हमको गिल्ट भी आता है। कोई कोई लोग मैंने देखा बहुत सहज है, वो कुछ नहीं पूछते, वो फट से कहते मेरा हिसाब किताब है और हल्के हो जाते। और कई लोग कहते मेरे को तो चींटी का भी याद नहीं कि मैंने कभी मारी होगी, फिर मैं कैसे मानूंगी मेरा हिसाब किताब है। चलो भाई तुम तीनों कालों पे विश्वास कर लो, परंतु ये जो नेगेटिव थॉट है कि मेरा हिसाब किताब नेगेटिव है, इससे वो खुश कैसे रहे, मुक्त कैसे रहे, हल्का कैसे रहे, गिल्ट में तो ना आए ना कम से कम। चलो मैंने एक्सेप्ट किया कि होगा कोई कारण अकारण, क्या इसमें दूसरे की साइकोलॉजी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है क्या? जैसे मैं इसलिए पूछती हूँ कि दादी जानकी जी का मुझे एक वृतांत याद है कि उन्होंने कहा कि जब वो छोटी थी तो बाबा के पास खड़ी थी तो उन्होंने एक सीन देखा था, वो बिल्कुल उसकी साक्षी गवाह थी। एक भाई आया, सामने से आया तो दादी ने उसके पहले उसके बारे में बाबा को बोला कि बाबा ऐसी घटना हुई और ये भाई जी ने ऐसे ऐसे कुछ किया है। लेकिन जैसे वो सामने आया, बाबा ने पूछा अच्छा बच्चे कैसे हो, उसने कहा कि मैं अच्छा हूँ। फिर उसने वही घटना बताई और टोटल उसने क्या किया, जो उसने किया था वो दूसरी बहन के नाम लगा दिया और जो बहन ने अच्छी अच्छी बातें की थी वो खुद के नाम लगा ली और रिपोर्ट कर दी। और दादी उसको बिल्कुल सामने देखी है तो दादी को बहुत आश्चर्य हुआ, पर दादी कुछ नहीं बोली, बाबा सामने खड़े है। तो जब वो चल अच्छा बच्चे अच्छा अच्छा चला गया तो दादी को बहुत ये हुआ, बाबा आपको मैंने सब कुछ बताया था और देखो इसने सब उल्टा कर दिया और जो इसने किया था उस पे लगा दिया सही वाले पे, तो आपने इसको कहा क्यों नहीं कि बच्चे तुम झूठ बोल रहे हो, आप तो जाने जाने ना रहो ना, फिर मैंने तो बताया है ना आपको। तो बाबा ने जरूर ये कहा था कि बच्ची आपने उसको देखा ना, अगर बाबा पूछता कि बच्ची तुम झूठ बोल रहे हो तो वो क्या जवाब देता, आप बताओ क्या जवाब देते? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ,
हाँ।
सबसे पहले वो ये कहता। तो बाबा ने कहा अगर बाबा पूछे और ये फिर कुछ कहे तो वो पत्थर बुद्धि हो जाएगा
और उसका पाप भी बनेगा,
इसलिए बाबा ने उसको अच्छा अच्छा कह के चला दिया। तो वो भावना से माना इनको एक समाधान मिले कि कोई क्या भी करे लेकिन ये अपने स्वमान में रहे, गिल्ट होकर के ये ना सोचे कि हमारा कारण ही कोई ये है। लेकिन किसी की साइकोलॉजी भी, कोई चोरी करता है और मैं समझो उस चीज को देख लिया तो वो पहले से मेरे लिए प्रबंध करके रखेगा ना कि ये बहन इधर से निकली और ये रिपोर्ट करेगी, पहले से इस बहन के बारे में कुछ दो चार बातें
उल्टा बता दो,
कान में डाल दो ताकि ये मेरी रिपोर्ट करे उससे पहले ही जो सुनने वाला है उसके प्रति बुरा सोच ले। तो माना उनको थोड़ा सा एक शुद्ध स्वमान भी पता चले हिसाब किताब के साथ, ये थोड़ी रिक्वेस्ट है।
माना हिसाब किताब समझ लेने का, लेकिन अपने स्वमान से हमें नीचे नहीं आना है। जैसे बहन जी ने कहा ना, एक तरफ वो हमारे से रिएक्शन हो रही है और अंदर अगर हम स्वमान से नीचे उतरते हैं और उस आत्मा के प्रति नेगेटिव सोचते हैं तो एक तरफ तो हमारा हिसाब किताब पूरा भी हो रहा है और दूसरे तरफ नया बनता भी जा रहा है। अभी संगम युग है, नया बनाने का तो नहीं है ना, पुराना हिसाब चुक्त करने का युग है। इसलिए हमें शुभ भावना रखना है और स्वमान के सीट को नहीं छोड़ना है। तो ऑटोमेटिक वो आत्मा रियलाइज करेगी और वो उसका हिसाब किताब वो जाने, हमें उसमें और लपेटना नहीं है उल्टा, समझा। तो किसलिए बोला ना, स्वमान में बिल्कुल, स्वमान ऐसी हमारी प्रॉपर्टी है, किसी भी हालत में हमें स्वमान के सिंहासन को नहीं छोड़ना है। दादी जी कई बार कहती थी हम कोई कठपुतली नहीं है, कोई हमको जैसा नचाना चाहे नचाए, महिमा को हिर करे तो हम खुशी में झूमते रहें, कोई ग्लानी करे तो फिर एकदम नीचे आ जाएं, छोटा मुंह करे। तो कठपुतली हमें किसी के हाथ के नहीं बनना है, हर परिस्थिति में अपने स्वमान में रहना है और आगे बढ़ना है। बाकी तो हिसाब किताब सामने आ ही जाता है, जैसे बहन जी ने क्लियर किया, बाबा को तो पता चलता ही है और धीरे धीरे हिसाब जो है वो कम होते होते जीरो होना ही है, समझा क्या। तो इसलिए जास्ती उसका हमें चिंतन नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम पावरफुल 10 मिनट योग का अभ्यास करें। अभिमान, अभिमान को तो क्लियर कर दिया। हाँ, अनुभूति, अनुभूति करने के लिए बहुत अच्छी युक्ति है अनुभव। जब तक स्वयं को अति सूक्ष्म बिंदु अणु नहीं समझते हैं तब तक इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अनुभूति नहीं होती है, ये बात पक्की है। जैसा हम अणु बिंदु अपने को समझते हैं, उसमें टिकते हैं तो अनुभव की खान हमें मिल जाती है, अनुभव की वर्षा हमारे पर होने लगती है। तो देह भान से न्यारे स्वयं को अति सूक्ष्म अणु बिंदु आत्मा समझते जाएंगे तो आध्यात्मिकता जो शब्द है ना, आध्यात्मिकता, इसमें आत्मिकता शब्द अंतर्निहित है, आध्यात्मिकता। जितना आत्मिकता को अपनाते हैं उतनी हमारे में आध्यात्मिकता आने लगती है, उतने अनुभव इस ज्ञान मार्ग में, इस क्षेत्र में हमें होते रहते हैं। आप देखो बहुत आपको अनुभव होते रहेंगे क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बाबा के साथ जुड़ गई, आप बिंदु, बाबा भी बिंदु और बुद्धि की तार जुड़ गई। तो बाद में सोर्स के साथ कनेक्शन जुड़ने के बाद बाबा आपको एक ना एक अच्छे अच्छे अनुभव देते ही रहते हैं, गिफ्ट के रूप में, सौगात के रूप में, समझा क्या। तो अनुभवी बनने के लिए बार बार हमें स्वयं को अति सूक्ष्म सितारा बिंदु समझते जाना है और स्वमान के साथ समझना है, फिर आप देखेंगे इतना आपको मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि बात मत पूछो। तो जैसे कि हम क्या करते थे, जैसे यहाँ मधुबन में रहते थे ना, तो हम मधुबन में पहाड़ों पर या छत पर एकांत में बैठते थे, अशरीर स्थिति का अभ्यास करते थे, और फिर जैसे ये अनादरा की तरफ, नकी लेक की तरफ हम जाते थे, तो एकदम क्या अभ्यास करते थे कि मैं देह से न्यारा एक चमकता हुआ सितारा हूँ, बस एक देह, एक प्रकार का एक स्टैंड है या मोबाइल पोल है, उसमें आत्मा रूपी बल्ब चल रहा है, जगमग रहा है, ऐसे गुप्त ही गुप्त अंदर ही अंदर अभ्यास करते थे, और इतने सुंदर अनुभव बाबा हमें कराता था, बात मत पूछो। समझा क्या? तो ये देह भान को पांडव का क्या गायन है, पांडव पहाड़ों पर चलते गए, कुत्ता पूंछ हिलाने वाला था वो भी उसके पीछे था, वो भी गायब हो गया, जैसे पहाड़ों पर चल गए पांडव गल गए और पता नहीं वो भी गायब हो गए। तो ये हमारा गायन है, हम जो प्रीत बुद्धि वाली आत्माएं हैं पांडव, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना माना ऊंची स्थिति पर चढ़ना, तो ये आत्मा की पूंछ देह है, ये देह की पूंछ भी, कुत्ता की ना पूंछ भी गायब हो जाती है, भूल जाते हैं, और जैसे जैसे और ऊपर जाते हैं तो आत्मा में जो देह का भान है वो भी गल जाता है। ये देह, देह भी छूट गया भान, देह का भान, फिर देह का भान का जो अलाय है इसमें वो भी गल गया, और फिर वो परमधाम चले गए, माना गायब हो गए, माना इस दुनिया से अपनी दुनिया में बैठ गए। इसलिए पांडव का गायन है। ये भाई जी का प्रश्न है, शिव मैं माना क्या? जैसे बाबा वो कन्हैया, वो मीरा कृष्ण मैं बन चुके थे, जो बहुत प्यारी चीज होती है, वो कहाँ बसती है? कहाँ बसती है? दिल में नहीं बसती है, वो आंखों में बसती है। माँ क्या कहती है? मेरा बच्चा मेरे आंखों का तारा है। तो कृष्णा थोड़ा सा छमछम करता हुआ, नाचता हुआ उसको दिखाई दिया, वो पागल हो गई मीरा, और कृष्ण मैं बन चुकी थी, उसकी आंखों में कन्हैया बैठा था, और जहां देखती थी कन्हैया ही कन्हैया मुझे नजर आ रहा, एक कण भी कन्हैया के बिना मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब उसके तीसरे नेत्र में कन्हैया बैठा था। तो ऐसे शिव मैं बन जाना, अर्थात हमारे तीसरे नेत्र में बाबा बैठ जाना, बाबा समा जाना, अर्थात जहां पर भी देखे हम बाबा ही बाबा हमें दिखाई दे, चलते फेरते उठते बैठते बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, उसको कहते हैं शिव मैं बन जाना। उसके बिना हमें कुछ सूझता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। ये बहुत इसी स्थिति की यादगार में लोगों ने कहा है आत्मा ही परमात्मा है, इसी स्थिति की यादगार में लोगों ने कहा है आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि ये बहुत जब स्थिति ऊंची हो जाती है ना, तो आत्मा अपने अस्तित्व को खो देती है और आत्मा एकदम परमात्मा में डूब जाती है, और उनके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार लोगों को होता है, इसलिए लोगों ने आत्मा ही परमात्मा है ऐसा कह दिया है। समझा क्या? तो इसलिए हमें ऐसी स्थिति, एकदम बहुत मस्ती वाली स्थिति हमें बनाना है। देखो जिससे प्यार लौकिक दुनिया में होता है ना, लोग जिसके प्यार, उसकी तस्वीर हमारे आंखों के सामने घूमती है, किसी भी कारण से प्यार होता है, कोई वस्तु, कोई उसका गुण है, कोई उसका रूप है, कोई रंग है, कुछ भी हो, ये लौकिक बात है। ऐसे बाबा हमें नजर आए, बाबा हटे नहीं हमारे बुद्धि से, बुद्धि रूपी नेत्र में बाबा ही बाबा दिखाई दे, उसको कहते हैं शिव मैं बन जाना। ठीक है ना? अभी दादियां हमारी देखो, बाबा कितना प्यार कर रहा है, क्यों प्यार करता है? क्योंकि बाबा के बिना उनको कुछ सूझता ही नहीं है, उनके रोम रोम में बाबा का प्यार है, बाबा की याद है श्वास श्वास में, इसलिए बाबा ही बाबा वो कहती रहती है, इसलिए बाबा उनसे प्यार इतना करता है, क्योंकि वो बाबा से प्यार इतना करते हैं। गलत बात को सहन करना कायरता नहीं है, गलत बात को सहन करना ये कायरता या कमजोरी नहीं है। गलत बात, कोई भी गलत करता है ना, तो वो गलत बात कभी ना कभी सत्य जरूर होती है, इसलिए धैर्य का सब्र हमें तोड़ना नहीं है। कहता है धीरज का पल्ला कभी भी हमें नहीं छोड़ना है, आज नहीं तो कल वो बात सामने आ जाती है और बड़े भी समझ लेते हैं कि ये गलत नहीं है, ये गलत थी, जो बोलने वाला जो ब्लेम करता था ना वो गलत था। तो धीरज का फल मीठा होता है, इसलिए बाबा कहते हैं तो ये कायरता नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये बल्कि और भी वो शक्तिशाली स्थिति की वो पहचान है। मैंने बोला ना विघ्नों के हाथोड़े जितने लगते हैं उतना हम मजबूत बनते हैं। अगर विघ्न हाथ तो मेरे सामने विघ्न आए भी नहीं और मैं उससे बचा रहूं ऐसा कहेंगे तो मूर्ति कैसे हम बनेंगे, शक्तिशाली स्थिति हमारी कैसे बनेगी। झूठे इल्जाम के साल पैसे का नुकसान हो रहा है, अगर उस वक्त इल्जाम को साबित करे तो पैसा देना पड़े तो, माना झूठा कोई इल्जाम करता है तो पैसा देना पड़ता है। तो इसमें भी क्या होता है, कभी भी समझो लेन देन की बात जो होती है ना वो भी हमारा हिसाब पुराना उसके आत्मा के साथ है तो ही ये होता है, नहीं तो लेना देना की जो बात होती है ना। एक बार क्या हुआ, मैं ज्ञान में आया तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो स्कॉलरशिप मिली ये ड्रेस में पहन के वो बंडल मैंने अपनी जेब में डाल दिया और ट्रेन में सफर करने लगा, तो जैसे चढ़ गया तो वो बंडल कहीं ना कहीं गायब हो गया। तो मैं इतना रोने लगा, पागल की तरह रोने लगा, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप तो कमाई होती है। फिर सेंटर पर गया, बहन दीदी को बोला मेरा ये पैसा क्यों गया, तुमको पैसा चाहिए तो पैसा लो ना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कारण बताओ ये मेरा पैसा क्यों गया, मेरी कमाई का पैसा था। बोले देखो कर्मों की फिलॉसफी ऐसी है, तुमने किसी से वो पैसा ले लिया और बूढ़ा था तुमने शरीर छोड़ दिया, अब पैसा तो वापस नहीं दिया, अब वो जन्म में पापों पैसा वापस नहीं दिया, कभी तो देना पड़ेगा ना, इसलिए जिसका पैसा था उसके पास चला गया, बात खत्म हो गई, तुम क्यों रो रहा है। तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई, कोई भी स्थूल या सूक्ष्म बात जो है किसी भी कारण के बिना नहीं होती है, उस आत्मा के साथ कुछ हिसाब किताब है। लेकिन हम बाबा को सत्य बाबा को लेकर बैठे हैं तो वो सत्यता एक दिन सामने आती जरूर है। हाँ तो देना ही पड़ता है ना, इसका मतलब है कि बिल्कुल इसका मतलब है उसका कर्जा मेरे पर था, मैंने पूरा कर दिया। नहीं नहीं रोज नहीं, वो तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन है। हाँ हाँ कहने का मतलब है कि कोई भी कारण जो है ना बिना ऐसी नहीं होती है, एक्शन हैज रिएक्शन बोलते हैं ना।
वैसे तो आपको खुशी होनी चाहिए, बच्चे कितने एक्टिव है आपको पूछ रहे। नहीं मेरा मतलब ये था, मैं समझती हूँ शायद एक पॉइंट ये रेज कर सकते हम कि जो भाई साहब पूछ रहे हैं जो मैं समझ रही हूँ।
हाँ आप बताइए।
कि किसी नेगेटिव चीज को, जैसे आजकल एक जीरो टॉलरेंस करके दुनिया में एक शब्द चलता है भाई साहब, जीरो टॉलरेंस, इट इज अ पॉजिटिव वर्ड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। तो मेरा मतलब है कि वो जो पूछ रहे हैं कि कोई नेगेटिव चीज होती है तो एक है सहन करने का क्या भावार्थ क्या है, माना उसकी पिक्चर क्या है, कि हम जो सही है उसको भी नहीं करें, उसको रिस्पोंड नहीं करें, चुप रहें, क्या होता है सहन करना। जैसे कि कोई चीज का मैसेज है, अगर वो मैसेज मेरे से गलत जा रहा है, क्योंकि मैं आपको दो तीन एग्जांपल बताऊं। एक बहन थी वो एम्प्लॉयमेंट में थी, एक भाई रोज उसको ऑफिस में ही, वो ब्रह्मा कुमारी है, वो आती थी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर लेकिन काम करती है ऑफिस में। तो एक भाई जैसे होते हैं कई, उसके पीछे पड़ गया कि मुझे इससे शादी करनी है। अब वो बार बार उसको चिट्ठी दे दे, ये दे दे, थोड़े दिन तक वो कुछ नहीं बोली, चिट्ठी दिया कुछ रख दिया, उसकी गाड़ी पे रख दिया, यहाँ रख दिया, बोल दिया, वो चुप रही, उसकी चिट्ठी साइड में डाल दिया, कुछ कर दिया, कुछ संभाल लिया। एक दिन उसको इतनी हिम्मत हो गई इस बात से कि उसने कहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं और आज तुम्हें मेरे को जवाब देना ही पड़ेगा। भले उसको पता है कि उसका उसका वो कहती दिखता नहीं है क्या मेरा ड्रेस और मेरा लक्ष्य और मेरा जीवन तुम्हारे को, लेकिन वो जो अंधापन होता है इंसान का, आखिरी में फिर उसने सेंटर पे आकर पूछा मैं क्या करूं। तो उनको समाधान दिया गया, आप अपनी महिला आयोग में शिकायत कर दो। वो शिकायत जिस दिन किया, भले संघर्ष हुआ, उसने कुछ भी गंदा बोला नहीं बोला दोनों का, लेकिन उस व्यक्ति को ये सबक हुआ कि महिला आयोग ने फैसला लिया, उसका डिमोशन हुआ, उसका स्टेट ट्रांसफर कर दिया गया लीगल रूल से, क्योंकि वो ऑफिस में ऐसे हरकत नहीं कर सकता। और उसने जितने भी बैड आर्ग्यूमेंट किए कि इसको दबाया गया, ये अपनी इच्छा जाहिर नहीं करती, मैंने क्या क्या बोला गया उसके द्वारा, तो ऐसे में वो स्वमान जो है क्या नॉन रिस्पॉन्सिव होना सहन करना है क्या? क्योंकि सहन करने में सामना करना पड़ता है अगर, तो क्या सामना करना गलत है कोई चीज का जो जीरो टॉलरेंस के वैल्यू से है? जैसे वो एक भाई है समझो, उसने मुझसे एक बार कहा, मैं गई थी, उसने कहा मैं 12 साल तक एक भाई को, पड़ोसी भाई को जिसका खेत है, वो मुझे 12 साल तक गाली देता रहा, मैं 12 साल हर रोज गाली देता, मैं चाय पिलाता, गले लगाता, वो आज तक नहीं बदला। तो हमने कहा कि, तो उसने कहा बाबा का जो महावाक्य है कि ग्लानी करने वाले को गले लगा, वो बहुत प्यारा भाई, उसने दिल से बोला दीदी मैं सच में गले लगाता, उसको चाय पिलाता बना करके, वो रोज गाली देता है। तो मैंने कहा ये भी तो हो सकता है ना कि वो सोचता हो कि चाय पीने की दिल हो रही है तो इसको गाली दो, ये चाय
ये पिलाएगा चाय।
तो माना आप भावार्थी है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत, कि सहन करना माना क्या। जैसे गांधी जी के पहले जो सहन करते थे वो एक बिना लक्ष्य की चीज थी, लेकिन गांधी जी ने हिंसा नहीं की, लेकिन उसको रिस्पांस तो दिया ना कि ये गलत है और ये सही है और मेरा हक ये बनता है और मैं सो एंड सो हूँ। भले हमारी उत्तेजना उसमें ना हो, लेकिन सहन करने में क्या सामना करना समाया हुआ नहीं है? क्योंकि हम जब शक्तियां पढ़ाते हैं तो दो शक्तियां जो डायगोनली एक दो के सामने हैं, हम मानते हैं कि एक उसको प्रोएक्टिव करती है। तो इस लिहाज से थोड़ा उनको स्पष्टीकरण शायद ठीक है। ओके,
मिल गया।
नहीं, आंसर आपसे चाहिए, मैंने तो उनकी आपकी दोनों तरफ की बात।
कहने का मतलब सहन करना तो सामना करना भी उसमें आ जाता है, फिर धीरे धीरे वो सहन करना हमारा जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है अकाउंट जो है ना। कोई भी आपने मेरे से 100 रुपया लिया, आप 2 रुपया दिया, 4 रुपया दिया, 25 रुपया दिया, 50 रुपया दिया, जब 100 हो गया माना मेरा आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए सहन करना भी कुछ हद तक सहन करना पड़ता है, उसके बाद में फिर वो पूरा हो जाता है।
जी, थैंक यू सॉरी। रेनू बहन
जी कल भी हैं आपके पास में
जी, बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब को जी, इतना अच्छा। आपकी सबसे अच्छी विशेषता मुझे ये लगती है, इनसे कुछ भी पूछो, क्या भी कहो, कभी भी मन आप पूरा इनको कह सकते हो, आप इनसे पूरा ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है ना।
ओम शांति।
थैंक यू भाई साहब। लीजिए।